कवि व्यक्तित्व और कथानायक। संदर्भ अंधेरे में, राम विलास शर्मा। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि में नई कविता लिखने वाले को प्रस्तुत करती है। परंपरा बोध के कारण कवि में अपराध भावना उत्पन्न होती है। इस परंपरा के एक प्रतिनिधि महात्मा गांधी हैं। उनके सामने कवि की स्थिति इस तरह की है। अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर मैं अतिदीन हो जाता हूँ। पास की बिजली का झटका कहता है, भाग जा, हट जा, हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। किंतु मैं देखा कि या उस मुख को गंभीर दृढ़ता की सलवटें वैसी ही शब्दों में गुरुता। यहाँ स्वाधीनता आंदोलन और महात्मा गांधी के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया गया है वह शाही और नामवर सिंह के दृष्टिकोण से ठीक उल्टा है। यदि कहें कि इस कविता का नायक मुक्तिबोध का प्रतिनिधि नहीं है तो मुक्तिबोध ने स्वयं अपनी ओर से गद्य में स्वाधीनता आंदोलन और महात्मा गांधी के बारे में जो कुछ कहा उसे सुन लीजिए। इन्वर्टेड कोमा में है, हजारों वर्षों में एकाध बार जो आदमी नजर आते हैं उनमें महात्मा गांधी का नाम आता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशुद्ध नैतिक अस्त्रों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। इस प्रचंड ब्रिटिश साम्राज्य को जो सन 47 के पहले दुनिया के सभी हिस्सों में था, महात्मा गांधी ने ऐसी करारी चोट दी कि वह हिल गया। पहली बार भारत के इतिहास में करोड़ों भूखे जनों को महत्व देने वाला, इनका सगा बनने वाला एक व्यक्ति सम्मुख आया जिसने उसी गरीब दबी कुचली जनता को नैतिक साहस प्रदान करके क्या का क्या बना दिया। उस नैतिकतापूर्ण जनशक्ति के आधार से ब्रिटिश साम्राज्य चूर चूर हो गया। उदाहरण चिन्ह बंद। भारत इतिहास और संस्कृति, पृष्ठ 143-147। मानना होगा कि अंधेरे में कविता राजनीतिक परंपरा का जो रूप प्रस्तुत करती है वह मुक्तिबोध की अपनी राजनीतिक समझ के अनुरूप है। अंधेरे में कविता का नायक तिलक को पिता कहकर संबोधित करता है। पिता की पाषाण मूर्ति पुत्र के निकम्मेपन से इतना दुखी होती है कि भव्य ललाट की नासिका में से खून बहने लगता है और लोकमान्य तिलक का अंगरखा खून के धब्बों से भर जाता है। कवि पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों को छाती से चिपका लेता है, रुआंसा हो जाता है और उसे लगता है कि उसके हृदय में रक्त टपक रहा है, आत्मा में खून का तालाब भर रहा है। अपनी उक्त गद्य पुस्तक में मुक्तिबोध तिलक के बारे में कहते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय जनता की उदासीन जड़ता हटाकर उसको वीर और साहसी बना दिया। तिलक एक महापंडित थे। पांडित्य के तेज में कार्य की शक्ति थी, कार्य की शक्ति में जनता में प्राण फूंक देने की ताकत थी। अंग्रेज उनकी लेखनी से थर्राए थे, उन पर राज्य द्रोह का मुकदमा चलाया गया। वह मुकदमा देश भर में गूंज उठा। उन्होंने भारतीय जनता को युद्ध शस्त्रों से नहीं का आह्वान किया था। उनकी मृत्यु सन 20 में हुई। बंबई के मजदूरों ने आम हड़ताल कर दी। सुदूर रूस में बैठे हुए लेनिन ने उसे देखा और कहा कि यह भविष्य का संकेत है। ऊपर वाले में ही पृष्ठ 157। ऐसे व्यक्तित्व का स्मरण करके कवि का पिता का उठना स्वाभाविक था। अंधेरे में कविता में केवल राजनीतिक परंपरा का बोध नहीं है, साहित्य की परंपरा का बोध भी है। ऐसा न होता तो आश्चर्य की बात होती, क्योंकि कविता का नायक मूलतः राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, कवि है। व्यक्तित्व का रूपांतरण। साहित्य और राजनीति की परंपरा का बोध, मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण, श्रमिक आंदोलन का समर्थन और मध्यवर्गीय लेखक के व्यक्तित्व के रूपांतरण की समस्या, ये सब चीजें परस्पर संबद्ध हैं। जिस देवता के सम्मुख जाकर कवि अत्यंत दीन हो जाता है वह महात्मा गांधी है। वही उसे फटकारते हुए कहते हैं कि यह दुनिया कचरे का ढेर नहीं है जिस पर चढ़कर कोई भी मुर्गा बांग दे तो मसीहा बन जाए। युगों युगों से जनता जो दुख सहती आई है, जिसमें श्रमिक वर्ग का संतोष भी शामिल है, वह जल पीकर मेरे युवकों में होता जाता व्यक्तित्वांतर। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है, मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित किया करे। मुक्तिबोध इस प्रक्रिया को एक रूपक द्वारा प्रस्तुत करते हैं। एक बलवान लुहार ने बहुत से कंडे जलाकर उस पर लोहे का चक्का रखा। कुछ अन्य बलवान लोग लकड़ी के चक्के पर जबरन घन मार मार कर लाल लाल लोहे की गोल पट्टी चढ़ाते हैं। उसी प्रकार अब आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर। लुहार श्रमिक वर्ग का प्रतीक है। वह घन चोट से जबरन मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के व्यक्तित्व पर संकल्प का टायर चढ़ाता है। इसी के अनुरूप परंपरा का बोध, कवि का विवेक उसे आत्मालोचन के लिए विवश करता है। तिलक की मूर्ति के पैरों से चिपके हुए कवि की आत्मा में जब खून का तालाब भर जाता है, तब उसके व्यक्तित्व को नए सिरे से गढ़ने की प्रक्रिया भी आरंभ होती है। इतने में छाती में भीतर ठक ठक, सिर में है धड़ धड़ कट रही हड्डी, फिक्र जबरदस्त, विवेक चलाता तीखा सारंदा, चल रहा वसूला छीले जा रहा मेरा यह निजत्व ही कोई। ऐसा नहीं है कि वह अपना निजत्व कहीं छोड़ आए हैं और अब उसे पाने के लिए बेचैन है। निजत्व उन्हीं के पास है, समस्या उसको बदलने की, और यह प्रक्रिया अत्यंत कष्टप्रद है। तार सप्तक के दूसरे संस्करण के लिए उन्होंने जो कविता भेजी उसका शीर्षक है एक आत्मवक्तव्य। इसमें उन्होंने अंधेरे में कविता के प्रतीकों द्वारा स्वयं अपने व्यक्तित्व परिवर्तन की बात कही है। नए नए रंदों और वसूलों से लगातार लगातार मेरी काट छांट, उनकी छील छाल अनिवार्य। दोनों कविताओं में व्यक्तित्व के परिवर्तन की, उसके नवनिर्माण की बात कही गई है। कविता के शीर्षक के अलावा मुक्तिबोध ने अपने वक्तव्य में सीधे सीधे अपने बारे में जो कुछ कहा है उससे अपनी कविता का संबंध उन्हें खुद जोड़ा है। भाव प्रकृतियों के ख्याल से यह कविता मेरा प्रायः सर्वांगीण प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, वह मेरी टिप्पणी को और आगे बढ़ाती है और कदाचित इसके बाद भी टिप्पणी भी अनावश्यक हो जाती है। इसलिए किसी को इस बारे में दुविधा में न होनी होना चाहिए कि मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का व्यक्तित्व परिवर्तन मुक्तिबोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है। यह उनकी अपनी समस्या भी है। एक समस्या एक आत्मवक्तव्य में है, अंधेरे में कविता में है। यह इस दूसरी कविता के नायक को मुक्तिबोध से अलग करके नहीं देखा जा सकता, किंतु एक आत्मवक्तव्य कविता उनका प्रायः सर्वांगीण प्रतिनिधित्व करती है, पूर्णतः नहीं। इस दृष्टि से अंधेरे में कविता का उनका प्रतिनिधित्व अधिक करती है। कारण यह है कि व्यक्तित्व परिवर्तन की प्रक्रिया के विरोध में मुक्तिबोध के जिद का चित्रण एक आत्मवक्तव्य में नहीं है, किंतु अंधेरे में कविता में है। भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे भी अंदर, हठ कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ है। जिस समय विवेक रंदा चलाता है और वसूले से उसका निजत्व छीला जाता है, उसी समय उसके मन में कोई भयानक जिद जाग उठती है। इस जिद की व्याख्या उन्होंने नहीं की, पर स्पष्ट है इसका संबंध निजत्व के छीले जाने से है। कवि मानो कहता है, तुम छील छील कर मेरा व्यक्तित्व ऐसा बदलोगे कि मेरा अपना कुछ रह ही न जाएगा, निजत्व ही नष्ट कर दोगे। इसलिए क्रांति और दमन के चित्र खींचने के बाद, युवकों के व्यक्तित्वांतर की बात कहने के बाद, एकाएक फिर स्वप्नभंग बिखर गए चित्र की मैं फिर अकेला। वह अकेले क्यों रह जाते हैं? इसलिए कि अपना वर्ग छोड़ना अपने पुराने व्यक्तित्व का नाश करने के समान है। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। पारिवारिक परिवेश से उनका अलगाव इस समस्या को और तीव्र बना देता है। अंधेरे में कविता का जिस रहस्यमय व्यक्ति को मुक्तिबोध खोज रहे हैं, वह उनकी संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिमाओं की पूर्ण अवस्था है। मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव है, रात का पक्षी उन्हें बताता है, वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति है। इसीलिए कविता के अंत में यह अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं होती। यदि केवल सर्वहारा वर्ग से तदाकार होने का प्रश्न होता, जो मजदूरों के जुलूस और संघर्ष में साथ रहने पर वह प्रक्रिया पूरी हो जाती। मुक्तिबोध की मनोरचना ऐसी है कि उसमें विवेक और तर्क बुद्धि उनके भावों और संवेदनों से टकराती है। इसीलिए विवेक का रंदा चलता है, व्यक्तित्व छीला जाता है। भावों और संवेदनों का संसार उन्हें अत्यंत प्रिय है। ये भाव और संवेदन अधिकतर स्वतः स्फूर्त और तर्क से परे जान पड़ते हैं। वैसे जैसे अवांछित मनोभाव दबाए जाने पर अवचेतन में छिपे रहते हैं, उसी तरह वांछित मनोभाव भी दमित होकर उसमें पड़े रहते हैं। दोनों प्रकार के दमन का कारण सभ्यता संबंधी मनुष्य की धारणाएं हैं। जो सभ्यता के अनुकूल न हो उसे व्यक्त न करना चाहिए। इस निषेध भावना के कारण निषिद्ध भाव अवचेतन में ठेल दिए जाते हैं। जो भाव वांछित हैं किंतु निषिद्ध हैं और अवचेतन में ठेले जाकर नष्ट नहीं हुए, उनका बहुत सजीव वर्णन अंधेरे में कविता में किया गया है। भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे एक अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा है। यह गुहा प्राकृत है क्योंकि उसका निर्माण मनुष्य ने सचेत रूप में नहीं किया। सभ्यता की सतहों से, चेतन मन के स्तर से वह बहुत नीचे है। वह एकांत और अंधियारी गुफा है क्योंकि चेतन मन उसे आसानी से नहीं देख सकता। उस खोह में एक प्रबल प्रपात है। इस प्रपात का जल प्राकृत है, आवेग भरा है। अवचेतन में वह सहज भाव राशि है जिसे सभ्यता द्वारा परिवर्तित नहीं किया गया। खोह के सांवले तल में मणि और रत्न बिखरे पड़े हैं। लहरों के तल से जो किरणें फूटती हैं, रत्नों के रंगीन रूपों की आभा में खोह की बेडौल भीते झिलमिला उठती हैं। जब चेतन मन यह दृश्य देखता है तो आनंद विभोर हो उठता है। मनुष्य के अनुभव, वेदना, विवेक, निष्कर्ष, विचार मणियों के रूप में प्राण जलप्रपात में घुलते हैं। प्रतिफल अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। कवि को लगता है कि लोक हित के लिए इन दमित भावों और विचारों का उपयोग हो सकता था। आगे जब मजदूरों का जुलूस दिखाई देता है तब मजदूरों की मुट्ठियों में वही मणियां, वही रत्न दिखाई देते हैं। कविता के नायक ने जिन भावों और विचारों का दमन किया था वे मजदूरों के पास भी हैं। वे मजदूरों के अवचेतन में नहीं हैं, वे मजदूरों के चेतन मन में हैं और उनके जीवन को प्रेरित कर रहे हैं। मजदूरों से भिन्न कविता के नायक की स्थिति यह है, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुखेला। कोई उसे पर्चा दे जाता है और उस पर्चे में उसे अपने ही गुप्त विचार, दबी हुई संवेदनाएं, अनुभव और पीड़ाएं जगमगाती दिखाई देती हैं। कविता के अंत में जिसे वह खोज रहा है वह किसी जनयूथ में खो जाता है और कविता का नायक अकेला रह जाता है। एक मानसिक रोग का नाम है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त मनुष्य को लग सकता है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं, यही नहीं उसे कई बार मार डाला गया है। इस प्रकार की मृत्यु कल्पना एक जगह वहां है जहां अंधेरे में कविता के नायक को लगता है कि सिर में है धड़ धड़ कट रही हड्डी, और दूसरी बार वहां उस स्टूल पर बिठाया जाता है और शीश की हड्डी जा रही तोड़ी। अन्य कविताओं में भी मृत्यु की कल्पना है, एक जैसे एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन में हम एक ढहे हुए मकान के नीचे दबे हैं। यहाँ कल्पना में मृत्यु नहीं हो जाती पर मृत्यु प्रक्रिया का अनुभव होता है। भयानक है बड़े बड़े ढेरों की पहाड़ियों नीचे दबे रहना और महसूस करते जाना पसली की टूटी हुई हड्डी। सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त व्यक्ति ईश्वर की या अपने शत्रुओं की आवाजें सुनता है, अथवा वह अनुभव करता है कि उसके शरीर के विभिन्न स्थानों में बिजली की किरणें प्रवेश कर रही हैं। कोलमैन, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, पृष्ठ 28। मुक्तिबोध की कविताओं में अचानक बिजली के झटके लगने का उल्लेख मिलता है, यथा अंधेरे में कविता में हृदय को देता है बिजली के झटके। इसी रोग के अंतर्गत विभाजित व्यक्तित्व का उल्लेख किया जाता है। ऐसा व्यक्ति उत्तेजना के क्षणों में असामान्य व्यवहार करे तो आश्चर्य न होना चाहिए। मुक्तिबोध ने जीवन में जिस तरह की उत्तेजना का अनुभव किया था वह असाधारण कोटि की थी। अंधेरे में कविता में जब वह कहते हैं, मेरा सिर गर्म है इसीलिए भरम है, सपनों में चलता है आलोचन, विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन, निजत्व माफ है बेचैन, क्या करूं किससे कहूं, कहां जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। यह किसी कल्पित कथानायक की स्थिति का चित्रण नहीं है। वर्णन में भाव तीव्रता का कारण अपनी स्थिति का बोध है। जैसा कि नेमी चंद्र जैन को लिखे हुए उनके पत्रों से ज्ञात होता है कि वह सचमुच दिल्ली जाने की सोच रहे थे। आगे जब वह कहते हैं कि मैं किसी छाया मूर्ति सा स्वयं के समक्ष खड़ा हो गया, बहस होने लगी और परस्पर तमाचे लगने लगे, तब इस आलोचन की व्यर्थता के बारे में कहते हैं, छिह पागलपन है, व्यथा आलोचन है। अंधेरे में कविता लिखने के समय उनकी जैसी स्थिति थी उसका वर्णन हरिशंकर प्रसाई ने किया है। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत, इतिहास और संस्कृति पर शासन ने प्रतिबंध लगा दिया था। उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत, जबलपुर लौटे तो बहुत टूटे हुए और बहुत क्रोधित, वह आदमी चट्टान जैसा था। लेकिन इस घटना ने उसके भीतर भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। वे बेहद उत्तेजित थे, कहते थे यह नंगा फासिज्म है, लेखक को लोग घेरें, शारीरिक क्षति की धमकी दें, इधर सरकार सुनने को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जा रही है, गला दबाकर आवाज घोंटी जा रही है। उदाहरण चिन्ह बंद, आलोचना, जुलाई सितंबर 68। भय और असुरक्षा की भावना मुक्तिबोध में पहले से ही थी, बाद की परिस्थिति में और सघन हो गई। परसाई आगे कहते हैं, उदाहरण चिन्ह, अंधेरे में कविता का यही रचनाकाल है। उन दिनों मुक्तिबोध बहुत आशंकाग्रस्त थे, छोटी से छोटी बात उन्हें विचलित कर देती थी। चाबी जिस जेब में रखी होने की उन्हें याद थी, अगर वह उस जेब में नहीं हो तो वे ऐसे सशंकित हो उठते थे जैसे कोई बड़ा षड्यंत्र उन्हें घेर रहा है। उन दिनों वे बहुत उत्तेजित होकर घंटों बहुत जोर से बोलते रहते थे, गले की नसें तनी हुई साफ दिखती थी, कनपटी लौकती थी, दम भर आता था और वे डबल स्ट्रांग चाय की मांग करते थे। उद्धरण चिन्ह बंद। मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। इस कविता में एक ओर वह निम्न वर्ग से अलग होकर सर्वहारा वर्ग की संगति में व्यक्तित्व रूपांतरण की अपनी सामान्य समस्या का विवेचन करते हैं, दूसरी ओर वह अपने उत्तेजित त्रस्त मन की असामान्य अवस्था का चित्रण करते हैं। रात के 2 बजे जंगल में सियारों की आवाज़ सुनाई देती है, रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़ गूंजती है, मन में किसी अनपेक्षित असंभव घटना का संदेह पैदा होता है, अचेतन प्रतीक्षा का जन्म होता है और कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए, ऐसा त्रास विपरीत संदर्भों में प्रकट होता है। शोषक व्यवस्था के अधिकारी कवि को अंधेरे में ले जाकर स्टूल पर बिठाते हैं, उसे लगता है कि सिर की हड्डी तोड़ी जा रही है। जब वह लोकमान्य तिलक की मूर्ति से चिपका हुआ आत्मालोचन करता है, तब भी उसे लगता है कि सिर में है धड़ धड़ कट रही हड्डी, या हड्डी कटने की कल्पना किसी आंतरिक संवेदन से उत्पन्न होती है। तिलक वाले प्रसंग में कहते हैं, आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब। कविता में आगे चलकर जब वह बहुत खुश दिखाई देते हैं और शिशु की पीठ थपथपाते हैं, तब उन्हें फिर लगता है, डूबता हूँ मैं किसी भीतरी सोच में, हृदय के थाले में रक्त का तालाब, रक्त में डूबी हैं द्युतिमान मणियाँ। इस दूसरे संदर्भ में रक्त का तालाब मणियों को छिपाए हैं। पहले संदर्भ में इन मणियों का उल्लेख नहीं है, किंतु दोनों संदर्भों में खून के तालाब का बिंब अकारण नहीं है, यद्यपि ऊपर से देखने में अबुद्धि संगत लगता है। काव्यनायक और मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविताओं को उनके व्यक्तित्व से अलग रखकर देखना संभव नहीं है। उन जैसा आत्म केंद्रित व्यक्ति स्वयं को कविताओं से अलग रख ही नहीं सकता था। नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान दूसरा संस्करण में मुक्तिबोध को उनकी कविताओं से अलग रखने पर बड़ा जोर दिया है। उनका कहना है, मुक्तिबोध अपनी कविताओं में जहाँ मैं का प्रयोग करते हैं, वहाँ वह मैं उनसे भिन्न काव्यनायक है। वह कविताओं का पाठक हो सकता है, लेखक नहीं। निश्चय ही यह काव्यनायक मुक्तिबोध का प्रतिरूप नहीं है और न इसे मुक्तिबोध समझने का भ्रम ही होना चाहिए। यह कवि की कल्प सृष्टि है, बल्कि कल्प सृष्टियों में से एक, ठीक उसी प्रकार जैसे एक साहित्यिक का डायरी का मैं और क्लाड इथरली, पक्षी और दीमक, विपात्र आदि कहानियों का मैं। पृष्ठ 248। मुक्तिबोध की कविताओं में जो आत्मभर्त्सना का स्वर है, उसके बारे में कहा है, इस आत्मभर्त्सना को स्वयं मुक्तिबोध की आत्मभर्त्सना कहना भारी भ्रम है। वस्तुतः मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में मैं के द्वारा अपने पूरे वर्ग मध्य वर्ग की आत्मभर्त्सना को व्यक्त किया है। पृष्ठ 297। नामवर सिंह के अनुसार अंधेरे में का काव्यनायक आत्मनिर्वासित व्यक्ति है और मुक्तिबोध से भिन्न है। अब कोई यदि स्वयं मुक्तिबोध को ही काव्यनायक समझता है, तो उसकी समझ को किसका पर्याय कहा जाए? किसी कविता के काव्यनायक मैं को आत्मनिर्वासित कहने से यह अर्थ किस तरह निकलता है कि उसका कवि भी आत्मनिर्वासित है? पृष्ठ 259-60। मुक्तिबोध पर एक लेख आलोचना में अग्नेशका सोनी ने लिखा था, इस लेख का महत्व यह है कि नामवर सिंह के अनुसार इसकी लेखिका कौन मनु प्रश्न उठाकर भी बिना इधर उधर भटके मुक्तिबोध के साहित्य के मूल तथ्य पर सीधे पहुंच गई। पृष्ठ 263। देखना चाहिए कि इस लेख में मुक्तिबोध को उनकी कविताओं और कहानियों के पात्रों से कहां तक जोड़ा गया है और कहां तक उन्हें अलग रखा गया है। लेखिका ने पहले उन कहानियों की चर्चा की है, उद्धरण चिन्ह, जिन पर मुक्तिबोध के लेखक व्यक्तित्व की छाप अपेक्षाकृत कम है, जो मानो किसी और से भी लिखी जा सकती थी, जो मुक्तिबोध की उलझी गुंफित भावनाओं का परिचय नहीं देती, उद्धरण चिन्ह बंद। दूसरी तरह की कहानियां वे हैं, उद्धरण चिन्ह, जिनका वस्तु तत्व सीधे लेखक के जीवन संघर्ष के क्षेत्र से लाया गया है। इन कहानियों के भावों और विचारों का मुक्तिबोध की डायरी से गहरा रिश्ता है, जगह जगह पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कविताओं से भी, उद्धरण चिन्ह बंद। एक साहित्यिक की डायरी यानी मुक्तिबोध की डायरी, चाहे डायरी लिखें, चाहे कहानी, चाहे कविता, जहां मुक्तिबोधपन है वहीं कला प्रभावशाली है, वहीं मुक्तिबोध की उलझी गुंफित भावनाएं भी हैं। कहानियों में मैं के प्रयोग के बारे में लेखिका आगे कहती हैं, उद्धरण चिन्ह, और यह आकस्मिक नहीं है, इत्तिफाक की बात नहीं कि इनमें जो सबसे अनोखी सबसे साहसिक कृतियाँ हैं उनका नायक उत्तम पुरुष में ही बयान करता है। इस कथानायक के भाव और प्रतिक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से स्वयं मुक्तिबोध की, कई मुक्तिबोध की हैं, कथानक कोष्टक में जो कि बाहरी चीज है, चाहे काल्पनिक ही हो, उद्धरण चिन्ह बंद। नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान में जो कुछ कहते हैं, अग्नेशका सोनी ने आलोचना में उससे ठीक उल्टी बात कही थी। उनके अनुसार कथानायक के भाव और प्रतिक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से मुक्तिबोध की हैं, गद्य लेखक मुक्तिबोध की ही नहीं, कवि मुक्तिबोध की भी। व्यक्तित्व विभाजन और अस्मिता का लोप। नामवर सिंह के अनुसार अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। कविता के नए प्रतिमान 235। कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान युग की सबसे ज्वलंत समस्या पूंजीवादी शोषण खत्म करने की है। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में किसान और मध्यम वर्ग के लोग मिलकर जब तक शोषक वर्गों के हाथ से सत्ता छीन कर वर्ग उत्पीड़न का अंत नहीं करते तब तक और कोई समस्या हल नहीं हो सकती। अस्मिता की खोज का अर्थ वर्ग संघर्ष है ऐसा प्रतीत नहीं होता। मुक्तिबोध की कविता में नामवर सिंह के अनुसार जिस वर्ग द्वारा अस्मिता की खोज की जा रही है वह मध्यम वर्ग है। वह मानते हैं कि मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में जिस अलगाव पर दृष्टि केंद्रित की है उसका प्रमुख आलंबन निम्न मध्यम वर्ग है। पृष्ठ 250। इस तरह अस्मिता की खोज मजदूरों द्वारा नहीं की जाती, बहुत से बहुत उनके संघर्ष की पृष्ठभूमि में इतर वर्ग का व्यक्ति अस्मिता की खोज करता है। मुक्तिबोध की कविताओं के संदर्भ में अस्मिता की खोज को आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या बनाने का महत्व है। निम्न मध्यम वर्ग की समस्या को समाज की सबसे ज्वलंत समस्या मानना, फिर यह निम्न मध्यम वर्ग व्यापक होकर समस्त मानवता को अपने भीतर समेट लेता है। उदाहरण चिन्ह आज के व्यापक संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। उदाहरण चिन्ह बंद पृष्ठ 235 से 236। नामवर सिंह ने आत्मनिर्वासन को व्यक्तित्व विभाजन से जोड़ा है। यह विभाजित व्यक्तित्व ऐसा है जैसा दोस्तोयेवस्की के अंडरग्राउंड मैन कथा में है। उसके नायक के समान अंधेरे में कविता का नायक बाह्य परिस्थितियों से भय खाकर एक तिलस्मी खोह जिस तरह के एलियनेशन की बात कहते हैं, दोस्तोयेवस्की के पात्र उससे भिन्न प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। जो मजदूर अपने जीवन और संघर्ष से अनुभव प्राप्त करके अपनी दमित संभावनाओं का विकास करते हैं वे दोस्तोयेवस्की के पात्रों से भिन्न कोटि के प्राणी होते हैं। नामवर सिंह ने मार्क्स के एलियनेशन का हवाला देने के बाद उनकी जगह स्थापित कर दिया व्यक्तित्व विभाजन, जो अर्धविक्षेप का एक लक्षण है। अंधेरे में कविता के नायक के आत्मनिर्वासन के प्रमाण स्वरूप वह ये पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं। व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में। इसके आगे दो पंक्तियां और है, पागल था दिन में सिर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। इसे सिर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क ठीक कहा गया है। कविता का नायक इससे भिन्न व्यक्ति है, यद्यपि दोनों में बड़ा अंतर नहीं है। उस पागल का गीत सुनकर काव्य नायक का व्यक्तित्व लगभग उसी का सा हो जाता है। प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया किसी छाया मूर्ति सा समक्ष, स्वयं के होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे। छिह पागलपन है, वृथा आलोचन है। अर्धविक्षेप की प्रारंभिक अवस्था में ऐसे क्षण आते हैं जब पीड़ित व्यक्ति को यह दिखाई देता है कि उसका व्यवहार असामान्य है। कविता के नायक की यही स्थिति है। जो पागल अपना खोया हुआ व्यक्तित्व रात में पा जाता है वह भीतर से पूरी तरह विभाजित हो चुका है। विभाजित व्यक्तित्व का लक्षण मानसिक असंतुलन का सूचक है। विक्षेप की अनेक प्रक्रियाओं के समान यथार्थ से आत्मरक्षा का यह भी एक रूप है। इससे भिन्न स्तर पर कविता का नायक वह सब होना चाहता है जो आदर्श रूप में उसके अपने बारे में कल्पित किया है। मुक्तिबोध अंधेरे में कविता लिखने के बहुत पहले से व्यक्तित्व विभाजन की स्थिति से परिचित है। व्यक्तित्व विभाजन मुक्तिबोध की अनेक कविताओं का विषय है। यह ऐसी स्थिति है जिससे उसका निकटतम संबंध है। व्यक्तित्व विभाजन के कारण बतलाते हुए उन्होंने अंतरात्मा और पक्षधरता निबंध में लिखा है। उद्धरण चिन्ह कहा जाता है कि इस युग में व्यक्तित्व का विकेंद्रीकरण होता है। सच्चाई यह है कि आत्मविभाजन और व्यक्तित्व का विकेंद्रीकरण व्यक्तित्व मन पर परस्पर विरोधी स्वरूप के बाहरी दबावों का ही परिणाम होता है। उद्धरण चिन्ह बंद नई कविता का आत्मसंघर्ष पृष्ठ 119। अस्मिता और वर्ग चेतना। अस्मिता अभिव्यक्ति भी है। मुक्तिबोध ने अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया वह पर अभिव्यक्ति खोई हुई है। अंधेरे में कविता का पागल अपना खोया हुआ व्यक्तित्व रात में पा जाता है, तो स्पष्ट ही इस प्रसंग में व्यक्तित्व ही अभिव्यक्ति है। पृष्ठ 262। आखिर व्यक्ति और अभिव्यक्ति में केवल इतना ही अंतर है कि एक में अभि उपसर्ग लगा है, दूसरे में नहीं लगा, इसलिए व्यक्ति माने अभिव्यक्ति। आगे चलकर यह अभिव्यक्ति व्यक्ति से अलग हटकर अपने साधारण अर्थ में जो है उसे प्रकट करने का अर्थ ग्रहण करती है, पर मुक्तिबोध की कविता में उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत वह केवल शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि कर्म की अभिव्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह बंद। अभिव्यक्ति अस्मिता के अब दो रूप हुए। जब शब्दों की अभिव्यक्ति होगी तब उसका अर्थ होगा कविता, जब कर्म की अभिव्यक्ति होगी तब उसका अर्थ होगा क्रांति। प्रमाण यह है। उद्धरण चिन्ह। पूर्वापर संदर्भ से स्पष्ट है कि यहाँ अभिव्यक्ति से अभिप्राय कविता भी है और क्रांति भी। उद्धरण चिन्ह बंद। इस कविता और क्रांति की विशेषता यह है कि वह जनता में जाकर घुल मिल जाती है। उद्धरण चिन्ह। अंततः यह अभिव्यक्ति काव्य नायक के अपने व्यक्तिगत ख्यालों के दायरे से निकलकर क्रांति के लिए सन्नद्ध जनयूथ में घुल मिलकर उसके साथ एकाकार हो जाती है। यानी अभिव्यक्ति जो क्रांति है वह क्रांति में विलीन हो जाती है और अभिव्यक्ति जो कविता है वह कविता पर मंडराती रहती है। इस प्रकार यह अभिव्यक्ति पूरी कविता पर आदि से अंत तक मंडराती रहती है और इसके साथ ही उसे खोजने वाले काव्य नायक की छटपटाहट भी। उद्धरण चिन्ह बंद। क्रांति और कविता में फर्क यह है कि क्रांति तो क्रांति में लीन हो जाती है किंतु कविता कविता में लीन नहीं होती, उस पर मंडराती रहती है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि काव्य नायक छटपटाता ही रह जाता है, उसके पल्ले न क्रांति पड़ी न कविता। अस्मिता भी खूब है, पूरी बहुरूपिया है, अब कौन सा रूप धरेगी कोई नहीं कह सकता। कहीं क्रांति है, कहीं कविता है, कहीं व्यक्तित्व है और काव्य नायक को खूब ही छकाती है। इसलिए वह आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। जनक्रांति का स्वरूप। जिस क्रांति में क्रांति विलीन होती है वह क्रांति किस प्रकार की है? मुक्तिबोध को समझने में लोग कैसी कैसे गलतियां करते हैं उन पर प्रकाश डालते हुए नामवर सिंह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। कोई मुक्तिबोध को एकदम सशस्त्र क्रांति का समर्थक घोषित कर रहा है जो किसी की राय में वे रहस्यवाद और अस्तित्ववाद के साथ मार्क्सवाद के समन्वय का असफल प्रयत्न करते हैं। उद्धरण चिन्ह बंद। पृष्ठ 243। चकमक की चिनगारियां से आग भभकने के बारे में पंक्तियां उद्धृत करके कहते हैं कि उद्धरण चिन्ह, यह आग क्रांति है और ये पंक्तियां क्रांति का आह्वान। उद्धरण चिन्ह बंद। पृष्ठ 247। नामवर सिंह ने स्पष्ट नहीं किया कि यह किस तरह की क्रांति है, एकदम सशस्त्र या एकदम अशस्त्र या दोनों के बीच। आगे बतलाते हैं कि मुक्तिबोध की अधिकांश कविताओं का अंत उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत किसी हड़ताल या जन आंदोलन अथवा किसी जनक्रांति के आरंभ से होता है। उद्धरण चिन्ह बंद। पृष्ठ 251। इस जनक्रांति शब्द का प्रयोग आगे भी होता है। मुक्तिबोध की कविता का मैं कहीं मन की गुहा में बैठता है, कभी अकेलेपन की निराशा में डूबता है और कभी उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत जनक्रांति के स्वप्न डूबकर मुक्ति का अनुभव करता है। उद्धरण चिन्ह बंद। पृष्ठ 259। इस जनक्रांति की कहीं कोई व्याख्या नहीं की गई किंतु मुक्तिबोध की कविताओं में यह क्रांति सशस्त्र अवश्य है, भले ही एकदम सशस्त्र न हो। अंधेरे में कविता में जिस जनक्रांति का चित्रण वह करते हैं उसमें बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र नहीं हैं, फिर भी मकानों के छत से गाडर कूद पड़े धम से, घूम उठे खंभे भयानक वेग से, चल पड़े हवा में, दादा का सोटा भी करता है दांव पेच, नाचता है हवा में गगन में नाच रही कक्का की लाठी। यह किसी अहिंसक जन आंदोलन का चित्र नहीं है। मुक्तिबोध निम्न मध्यवर्ग को भले न छोड़ पाए पर वह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि समाज का प्रमुख क्रांतिकारी वर्ग सर्वहारा है। इसीलिए अंधेरे में कविता में बुद्धिजीवी युवक अपने आप व्यक्तित्व परिवर्तन नहीं करते, यह काम करते हैं मजदूर। प्रतीक है सांवले रंग का एक बलवान लोहार, उसने कंडों की आग जलाकर लोहे का चक्का गर्म किया है। उसके सहयोगी कुछ बलवान जन सांवले मुख के घन मार मार कर लाल लोहे की पट्टी लकड़ी के चक्के पर जबरन चढ़ाते हैं। इस प्रतीक का भाष्य है, आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर। वेदना के जिन नदियों में श्रमिक का संताप डूबा है उसका जल पीकर युवकों में व्यक्तित्वांतर होता है। आत्मसंघर्ष इसलिए होता है कि मध्यवर्ग की भूमि छोड़ना कठिन है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मुक्तिबोध के अनुसार क्रांति का नेतृत्व मध्यवर्ग के बुद्धिजीवी ही कर सकते हैं। इस तरह की स्थापनाएँ नामवर सिंह की अपनी है। मुक्तिबोध की कविताओं में बुद्धिजीवियों को क्रांति का पाठ पढ़ाने वाले दूसरी तरह के लोग विद्यमान हैं। कला का विकास। मुक्तिबोध की काव्य कला क्रमशः विकसित हुई है। उनकी बाद की कविताओं में अपेक्षाकृत अधिक नाटकीयता है किंतु मूलतः आत्मगत भावों मनोदशाओं और निकटवर्ती परिवेश के चित्रकार हैं। नाटकीय कविताओं में सामान्यतः एक ही व्यक्ति बोलता है, दूसरे व्यक्तियों की बातचीत जहां तहां उसी एक वक्ता के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। अंधेरे में कविता में काव्य नायक आदि से अंत तक बोलता है, उसका आदर्श प्रतिरूप एक बार भी नहीं बोलता। गांधी जी या विभाजित व्यक्तित्व वाला पागल जो कुछ कहते हैं उसे पाठक काव्य नायक के माध्यम से ही सुनता है। आसमानी आवाजों की तरह कहीं किसी पक्षी ने क्या कहा वह सब वक्ता के माध्यम से पाठक सुनता है। यह कला मुक्तिबोध की कहानी कला से मिलती जुलती है। अधिकांश कहानियों में लेखक है और उसका एक मित्र है, दोनों की बातचीत कथा का मुख्य भाग होती है। अंधेरे में कविता की यह विशेषता है कि उसका प्रवाह एक सा नहीं है, उसमें बड़ी विविधता है। उसमें विभिन्न शैलियों, विभिन्न कोटियों की व्यक्तित्व कलाओं का मिश्रण है। मुक्तिबोध को इस बात का श्रेय है कि हिंदी के बुद्धिजीवियों में जिस नए अवसरवाद का विकास हुआ, उसे उन्होंने पहचाना। उन्होंने साम्राज्यवाद से उसके संबंध का उल्लेख एक से अधिक बार किया और उसकी प्रगतिवाद विरोधी स्थापनाओं का खंडन किया। मुक्तिबोध के काव्य में यह लघुमानव और महामानव का अंतर विरोध कभी समाप्त नहीं होता। अंधेरे में कविता में उसका नायक आजानुभुज दिव्य पुरुष को अपने आदर्श रूप में कल्पित करता है। यह दिव्य पुरुष मुक्तिबोध की खोई हुई अस्मिता नहीं है, यह व्यक्तित्व की ऐसे उदात्त कल्पना है जिसे पाना असंभव है। और सब भले हो जाए, गौर वर्ण और आजानुभुज वाला रूप प्राप्त न होगा। मुक्तिबोध के काव्य में जगह जगह जो अपराध बोध का अतिरंजित रूप मिलता है, वह मार्क्सवादी दायित्व बोध से भिन्न है। मुक्तिबोध की समस्या और भी जटिल इसलिए हो जाती है कि उनके व्यक्तित्व का जिस ढंग से विकास हुआ है, उससे दुःस्वप्न, पाप बोध, त्रास की भावना, मन की असामान्य स्थिति के कारण अस्तित्ववादी प्रभाव के बिना भी उनमें विद्यमान है। विभाजित व्यक्तित्व की असाधारण स्थिति से मुक्तिबोध परिचित थे और उन्होंने अपने काव्य में इसका चित्रण किया है। यह विभाजित व्यक्तित्व पुनः अस्मिता की खोज, आत्मनिर्वासन आदि से बिल्कुल भिन्न वस्तु है। मुक्तिबोध अपने मन की गतिविधि का अध्ययन निरंतर करते रहे थे। वह अवचेतन में झांक कर उसकी शक्ति को पहचानने का प्रयत्न भी करते हैं। इस अवचेतन में भले और बुरे दोनों प्रकार के भाव और विचार दमित होकर एकत्र होते हैं। साथ ही यह अवचेतन जीवन शक्ति का आगार है और काव्य रचना से उसका गहरा संबंध है। मुक्तिबोध को केवल अधिक विकसित ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान की तलाश है, जिसे वह ऐतिहासिक अनुभूति कहते हैं। वह देश काल की सीमाएं लांघकर सूर्य के विस्फोटकारी केंद्र से मनुष्य की आत्मा का संबंध स्थापित करती है। ये सारी भाववादी प्रवृत्तियां मुक्तिबोध की चेतना में मार्क्सवाद से टकराती हैं। वे उनमें संतुलन स्थापित करने का असफल प्रयत्न करते हैं, इसलिए उनका आत्मसंघर्ष कभी खत्म नहीं होता। मुक्तिबोध को उनकी कविताओं से अलग करके देखना संभव नहीं है। वे मूलतः अपने ही संघर्ष को, अपने अनुभवों, अपनी समस्याओं को कविता में चित्रित करते हैं। ये समस्याएं निम्न मध्य वर्ग को छोड़कर अन्य वर्ग का साथ देने की ही नहीं है, इनमें मुक्तिबोध की अपनी मानसिक उलझनें, मन की असामान्य दशाएं भी शामिल हैं। भारी उलझनों के बीच मुक्तिबोध हथियार डालकर बैठ नहीं जाते। विभिन्न स्तरों पर वह निरंतर संघर्ष करते हैं और आत्म केंद्रित होते हुए भी वह समाज को आँखों से ओझल नहीं होने देते। उनकी स्वप्नशीलता और प्रतीक योजना यथार्थ चित्रण को एक हद तक कमजोर करती है, किंतु उनकी कला विकसित हो रही थी और वह उसके विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे। अभिव्यक्ति उनके लिए सबसे पहले काव्य संबंधी अभिव्यक्ति है, उसे वह खोज रहे हैं क्योंकि कला का विकास अभी करते जाना है। मुक्तिबोध ने मार्क्सवाद से सीखा कि पूंजीवादी समाज व्यवस्था को बदले बिना क्या निम्न मध्य वर्ग और क्या श्रमिक वर्ग, इनकी मूल समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। समाज को बदलने के लिए संघर्ष आवश्यक है, यह उनकी कविताओं से स्पष्ट है, किंतु इस संघर्ष को चलाने के लिए क्रांतिकारी पार्टी का संगठन आवश्यक है, यह स्पष्ट नहीं है। उनके काव्य नायक निम्न मध्य वर्ग के होते हैं, किंतु उनके व्यक्तित्व को बदलने का काम मजदूर करते हैं। मुक्तिबोध यहाँ मार्क्सवाद की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करते, उन सीमाओं के भीतर रहते हुए सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका वह स्वीकार करते हैं। यह एक रोचक बात है कि मुक्तिबोध की कविता में जहाँ भी मजदूर दिखाई देते हैं, वहाँ उनके लिए न तो आत्मनिर्वासन जैसी कोई समस्या है, न व्यक्तित्व विभाजन की समस्या है, न व्यक्तित्व के रूपांतरण की समस्या है। मुक्तिबोध के लिए मजदूर वर्ग एक स्वस्थ वर्ग है, जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शक्ति है। निबंध समाप्त।